अब आगे, अब केवल अरमान और आस्था बचे हुए थे। सब उन्हें चीयर अप कर रहे थे, लेकिन अरमान बार बार आस्था का हाथ पकड़ लेता था, जिसकी वजह से खेल जल्दी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वहीं आस्था ने अचानक अपने एक नाखून को अरमान की उंगली में चुभा दिया, जिससे अरमान पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और उसके बाद भी वो मुस्कुराकर आस्था की ओर देखता रहा। तभी आहान ने जैसे ही अरमान को इस तरह से आस्था का हाथ पकड़े हुए देखा, वो आंखें मटकाते हुए बोला, भाई आप ये क्या कर रहे हैं? आप भाभी के साथ रोमांस तो अपने कमरे में भी जाकर कर सकते हैं ना? अब क्या आप पूरी रात हमें यहीं खड़ा रखेंगे? जल्दी से जीतिए ना, आपको जीतना ही होगा। आप इस तरह से भाभी को जीतने का मौका नहीं दे सकते हैं। अब जैसे ही आहान ने ये कहा, अरमान झेंप गया। बाकी सब मन में मुस्कुराने लगे। वहीं दादाजी के चेहरे पर सुकून सा बिखर गया था, क्योंकि वो अपने पोते की जिंदगी हमेशा खुशहाल और आबाद देखना चाहते थे, और शायद वो दिन आ गया था जब उन्हें ये लग रहा था कि उनके बेटे की जिंदगी में अब किसी तरह का कोई दुख, दर्द या तकलीफ नहीं आएगी। और रही बात अबीर सिंह राठौर की, तो वो भी बहुत जल्द अब उनकी जिंदगी से चला जाएगा। आस्था के हाथ को इस तरह से पकड़ने और आहान के टॉन्ट करने पर अरमान ने आस्था का हाथ छोड़ दिया, और आस्था अंगूठी ढूंढने पर कॉन्सेंट्रेट करने लगी, और जल्दी ही अंगूठी आस्था और अरमान दोनों के हाथों में थी। अब दोनों के हाथों में अंगूठी देखकर ध्रुव, आहान और बाकी सब हैरान हो गए, और तब ध्रुव बोला, ये क्या हुआ? ये मैच तो टाई हो गया, दोनों के हाथों में अंगूठी मिली है, अब इसका फैसला कौन करेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा? तब नानी माँ बोली, अरे ये तो बहुत अच्छा शगुन हो गया है, अच्छी बात है अंगूठी दोनों के हाथों में है, तो इसका मतलब साफ है दोनों अपनी गृहस्थी को इक्वल लेकर चलेंगे। अब जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, सब मुस्कुराने लगे, और तब नानी माँ ने एक छोटी सी पूजा करवाई, और उसके बाद बताया कि हम कल सुबह नई नवेली दूल्हा और दुल्हन को कृष्ण जी के मंदिर लेकर जाएंगे और उन्हें वहाँ आशीर्वाद दिलाकर लाएंगे। अभी रात बहुत हो गई है, अब आप सब जाकर आराम कीजिए। ऐसा बोलकर नानी माँ ने बाकी सबको आराम करने के लिए भेज दिया। इस बार अरमान ने अच्छे से कमरे के दरवाजे को बंद किया, ताकि इस बार फिर रस्म के नाम पर कोई आस्था को उसे नीचे लेकर जाने के लिए ना आ जाए। और फिर बड़े ही प्यार से उसने आस्था के घूंघट को उठाया, और आस्था की खूबसूरती में कितनी ही देर तक खोया रहा, और अचानक अरमान आस्था के गोद में अपना सिर रखकर लेट गया, और आस्था हल्के से अरमान के बालों में अपने हाथ घुमाने लगी। वहीं दूसरी ओर आकाश और रश्मि दोनों इस वक्त अपनी शादी की रात को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे और एक दूसरे के साथ जी भरकर प्यार कर रहे थे। वहीं टाइगर जब अपने कमरे में मौजूद था, तब मारिया बाथरूम से बाहर आई। उसने टाइगर को घूंघट उठाने का भी मौका नहीं दिया था, क्योंकि मारिया को ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए कमरे में आने के बाद वॉशरूम में घुस गई थी, और उसने अपने आप को भारी भरकम लहंगे और गहनों से आज़ाद किया। और वहीं टाइगर ने जैसे मारिया को एक बार फिर कैजुअल कपड़ों में देखा, तो उसने अपना मुंह पिचका लिया, क्योंकि वो दुल्हन बनी मारिया को थोड़ी देर और देखना चाहता था। लेकिन मारिया के इस तरह से कपड़े चेंज करने पर उसका पारा हाई हो गया, और बिना मारिया से कोई भी बात किए वो दूसरी तरफ मुंह करके मुंह फुलाकर लेट गया। वहीं मारिया ने भी टाइगर को कुछ ज्यादा खास लगाव नहीं दिखाया, और वो भी आराम से दूसरे साइड लेट गई थी। हालांकि दोनों की ही आंखों से नींद कोसों दूर थी, और दोनों शायद उस वक्त एक दूसरे का साथ चाहते थे। और इसी सोच के साथ जैसे ही दोनों ने एक साथ करवट बदली, दोनों का सर आपस में टकरा गया। वहीं टाइगर अब मारिया को अपने पास देखकर खुद को रोक नहीं पाया, और उसने अपने होठों से मारिया के होठों को जोड़ दिया। वहीं मारिया भी अब आगे बढ़कर टाइगर को किस करने लगी थी, और दोनों में एक बार फिर से इंटीमेट होने लगे थे। वहीं अरमान तो आज सिर्फ अपनी खूबसूरत सी बीवी की बाहों में सुकून चाहता था, इसीलिए कितनी ही देर तक आस्था के गोद में लेटा रहा। आस्था को भी अब बैठे बैठे नींद आने लगी थी। ऊपर से आस्था ने इतना भारी भरकम लहंगा पहना था, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो रहा था, लेकिन उसका दिल नहीं चाहा कि वो अरमान को इतने प्यार से सोता हुआ देखकर अपने पास से उठा दे। वहीं दूसरी ओर कोई आंसू बहा रहा था। वो कोई और नहीं, वो देव था, जिसे अरमान ने वीर की निगरानी पर लगा रखा था। वीर का पहरा कोई और नहीं बल्कि देव खुद कर रहा था। देव ने वीर रायचंद को अरमान के फार्म हाउस में किडनैप किया था, और इस ख्याल से कि आज मारिया टाइगर की शादी हो गई है, ये सोचकर देव की आंखों में फिर आंसू आ गए थे, क्योंकि वो मारिया को पसंद करने लगा था। और इस ख्याल से कि टाइगर और मारिया दोनों एक हो रहे होंगे और अपनी फर्स्ट नाइट एंजॉय कर रहे होंगे, तो उसके भी दिल में आग सी लग रही थी। और आज देव खुद के होश में नहीं था, और लगातार कितनी ही सारी शराब पीना उसने शुरू कर दिया था, और इस बीच वो कब बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा उसे पता ही नहीं चला। और इसी बात का फायदा उठाते हुए वीर ने उसकी पॉकेट से चाबी निकाल ली थी और खुद को आज़ाद करवा लिया था, और जैसे तैसे बचते भागते हुए वहां से बाहर निकल आया था। लेकिन आज़ाद होने के बाद उसका इंतजार कोई और नहीं बल्कि अबीर सिंह राठौर कर रहा था। अबीर ने वीर को देख लिया था और सीधा अपने कब्जे में ले लिया था। वहीं दूसरी ओर राधिका अपने कमरे में थी। रौनक भी राधिका के साथ थी, क्योंकि उन दोनों ने अब एक जगह रहने का फैसला किया था। दोनों ही एक ही हफ्ता वहां रुकने वाली थीं, तो दोनों ने डिसाइड किया कि वो अब एक साथ रहेगी। वैसे भी रौनक तो अनाथ थी, राधिका का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसका भी उसे दुनिया में कोई नहीं था। वहीं रश्मि ने उन्हें अपनी फ्लैट की चाबी दे दी थी कि वो दोनों एक साथ वहां रह सकती हैं। साथ ही साथ राधिका ने आकाश से बात कर ली थी। आकाश ने उसे कह दिया था कि सुमित अब उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा और वो अब अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां जा सकती है और जहां चाहे वहां रह सकती है। वहीं आकाश की बात सुनकर सुमित को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन वो अपने दोस्त की बात भी नहीं टाल सकता था। इसीलिए उसने कह दिया था ठीक है, वो लड़की से कोई मतलब नहीं रखेगा, और उसने भी अब राधिका को अपनी तरफ से आज़ाद कर दिया था। तो राधिका ने डिसीजन लिया कि वो रौनक के साथ ही रहेगी जब तक कि उसे कहीं और कोई ठिकाना नहीं मिल जाता। वह अरमान सिंघानिया बिल्कुल बच्चों की तरह आस्था को गोद में सिर रखकर उसे पकड़कर सोया हुआ था। उसे किसी तरह का कोई होश नहीं था। आस्था भी बैठे बैठे अरमान के कमर पर अपना सिर रखकर सो गई थी। वहीं अरमान के सुबह के 5 बजे करीब आंख खुली, और जैसे उसने अपने आप को आस्था की गोद में पाया, साथ ही साथ आस्था को इस तरह से सोते हुए पाया, तो अरमान को बहुत बुरा लगा, क्योंकि आज उसकी जिंदगी की एक हसीन रात थी, लेकिन उसने सुकून के चक्कर में ऐसे ही गुजार दिए थे। और आस्था ने भी कपड़े चेंज नहीं किए थे, तो उसे लग रहा था कि ना जाने उसकी प्यारी खूबसूरत सी नाजुक बीवी आस्था के बदन पर ये गहने कितने ज्यादा भारी लग रहे होंगे, कितने ज्यादा उसे परेशान कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं अरमान सभी गहनों को घूर कर देख रहा था कि इन गहनों को कोई अधिकार नहीं था उसकी प्यारी खूबसूरत बीवी रुई के समान कोमल आस्था को चोट पहुंचाने का।
इसीलिए अरमान ने बड़े ही प्यार से आस्था को होल्ड करके बेड पर लेटाया और एक एक करके धीरे धीरे उसके गहने निकालना शुरू कर दिए, और बड़े ही आराम से बहुत ईजी तरीके से वो इस तरह से आस्था को छू रहा था, उसके गहने उतार रहा था, जिससे आस्था को इतना सा भी एहसास ना हो कि इस वक्त उसके साथ क्या हो रहा है। आस्था ने काफी ज्यादा भारी भरकम ब्राइडल ज्वेलरी पहनी हुई थी। जल्दी अरमान ने आस्था के कानों, माथे के झूमर के साथ ही साथ उसके कानों के बड़े बड़े झुमके निकाल दिए थे। आस्था ने एक बड़ा सा जूड़ा बनाया हुआ था। फटाफट से उसने आस्था के खूबसूरत घने बालों को जूड़े से भी आज़ाद कर दिया था। हालांकि आस्था थोड़ा थोड़ा नींद में कसमसा रही थी, लेकिन वो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बेखबर होकर सोई रही। वहीं अरमान प्यार से बीच बीच में आस्था को देखता रहा था। इन द लास्ट जब अरमान ने आस्था को उसके भारी भरकम लहंगे से आज़ाद करना चाहा, ठीक उसी वक्त आस्था की आंख खुल गई थी और एकदम से वो डर के बैठ गई थी। आस्था को इस तरह से घबराहट में देखकर अरमान उसे शांत करते हुए बोला, डोंट वरी, मैं ही हूँ। आप इस लहंगे में अनकंफर्टेबल होंगी तो बस इसीलिए मैं आपको कपड़े चेंज कर रहा था। अब जैसे ही अरमान ने ये बताया, आस्था ने एकदम खुद को शांत किया और अगले ही पल अपने सिर को अरमान के कंधे पर रख दिया, और तब अरमान ने मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में थाम लिया, और तब अरमान जल्दी ही आस्था के कपड़े चेंज करने लगा। वहीं आस्था ने इस बीच एक बार भी अरमान को आंख उठाकर नहीं देखा था, और कहीं ना कहीं आस्था का यूं शर्माना, इस तरह से उसकी ओर ना देखना अरमान के दिल में गुदगुदी सी पैदा कर रहा था। उसका इरादा उस वक्त आस्था को कपड़े पहनाकर अच्छे से कंफर्टेबल सुलाने का था, लेकिन अब उसका इरादा बदल चुका था। आस्था शर्माई शर्माई सी, एकदम गुलाब के फूल सी उसे बड़े ही प्यारी लग रही थी। जल्द ही अरमान ने आस्था की खुली पीठ पर अपने होठों को चलाना शुरू कर दिया। अब आस्था भी मदहोश हो गई थी और दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से खो गए थे। वो जल्द ही हसीन रातों के बाद एक बड़ी ही खूबसूरत अगली सुबह हो गई थी। वहीं दूसरी ओर, वहीं ध्रुव, जिसे शादी वाले दिन ही एक सर्जरी करने के लिए जाना था, शादी और फंक्शन कंप्लीट होने के बाद वो रात के करीब 10 बजे के अराउंड सिंघानिया मेंशन से निकल चुका था और सीधा हॉस्पिटल में पहुंच चुका था। और जैसे ही वो रात के 10 के अराउंड हॉस्पिटल में गया, उसने रात 11 के बाद का सर्जरी का टाइम दिया था, क्योंकि ध्रुव के लिए ये प्लस पॉइंट था कि सर्जरी रात को होनी थी, दिन में सर्जरी नहीं थी। अगर दिन में सर्जरी होती तो शायद वो अरमान, आकाश और टाइगर की शादी मिस कर देता। लेकिन फिलहाल ध्रुव के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन था कि ना तो उसका काम रुका और ना ही वो शादी मिस की। अब ध्रुव हॉस्पिटल में तो पहुंच गया था, लेकिन जिस मरीज की सर्जरी होनी थी वो मरीज अस्पताल में नहीं था। अब ध्रुव का पारा हाई हो गया था कि रात के इस वक्त वो सर्जरी करने के लिए वहां आया, लेकिन सर्जरी करने वाला मरीज गायब है। तब ध्रुव के गुस्से का सामना हॉस्पिटल को करना पड़ा। तब डॉक्टर ने ध्रुव को समझाते हुए कहा कि उसे बूढ़े की जो बेटी थी वो बड़ी ही जबानदराज थी, और उसे रह रहकर यही लग रहा था कि हम लोग उसके पिता के साथ कुछ कर रहे हैं और उसके पिता को हम लोग मार डालेंगे, और हम उसके उनके इलाज में कोताही बरत रहे हैं। इसीलिए वो अपनी जबानदराजी पर रात में ही अपने पिता को डिस्चार्ज कर ले गई है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है ध्रुव सर कि वो वापस यहीं आएगी,
क्योंकि उसके पिता की हालत काफी खराब है। अब जैसे ही डॉक्टर ने ये कहा, ध्रुव केवल उस डॉक्टर को घूर कर रह गया था, क्योंकि एक तो शादी के फंक्शन से काफी ज्यादा थका हुआ था और सर्जरी के लिए उसे एकदम फ्रेश होना होता था। तो इसीलिए अब ध्रुव वापस से घर भी नहीं जा सकता था, तो इसीलिए वो अस्पताल के ही VIP वार्ड में आराम से सो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग, वेल अगली सुबह, सभी नई नवेली दुल्हनों ने खूबसूरत सी येलो कलर की हल्के रंग वाली साड़ी पहनी थी। आस्था तो साड़ी में कयामत ढा रही थी, साथ ही साथ रश्मि और मारिया सभी एक से बढ़कर एक लग रही थी। मारिया वो शादी येलो कलर की साड़ी नहीं पहनना चाहती थी, लेकिन नानी माँ ने रात में ही इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि उन्हें ये साड़ी पहननी ही होगी और साड़ी पहनकर उन्हें कान्हा जी के मंदिर चलना होगा, ताकि नई नवेली दुल्हा दुल्हन को कान्हा जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। अब नानी माँ की बात मानते हुए मारिया और बाकी सभी ने साड़ियाँ पहन ली थी। वहीं आस्था तो अरमान के प्यार के बाद बेहद खिल उठी थी, और अब अरमान तो आस्था को प्यार करने के बाद अपने जिम वाले रूम में चला गया था। लेकिन इस बीच आस्था ने अच्छे से तैयार होना शुरू कर दिया था। आस्था ने अच्छे से अपने बालों को वॉश किया था, साथ ही साथ आस्था की कमर के पास से हल्का हल्का पानी टपका हुआ था, क्योंकि आस्था के बाल गीले थे, जिसकी वजह से उसकी कमर से होते हुए पानी उसके पेट से नाभि में जा रहा था। आस्था ने येलो कलर की साड़ी में एकदम कयामत ढा रही थी। अब अरमान जैसे ही अपना जिम कंप्लीट करने के बाद नहाने के लिए कमरे में आया और उसने आस्था को इस तरह से देखा, तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया था।